ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद पहला अध्याय। अध्याय का नाम है राजा सुद्युम्न का स्त्री बनना। आज श्लोक संख्या है 19 से लेकर 33 तक। तो इससे पहले इस चैप्टर के बारे में हमने सबसे पहले हृदय केशवमाई प्रभु से सुना था, उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर कर्णाचंद प्रभु से, फिर शुक्ल प्रभु से। तो इसका कुछ बैकग्राउंड ये है कि व्यवस्थित मनु थे जो पिछले कल्प में राजा सत्यव्रत थे, तो अगला कल्प में वो राजा व्यवस्थित बने, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इसके लिए उन्होंने जो कश्यप मुनि थे, वशिष्ठ को अप्रोच किया कि मेरे को संतान नहीं, आप कुछ कीजिए। तो वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उनकी इच्छा थी कि पुत्री हो, बट जो व्यवस्थित मनु थे उनकी इच्छा थी कि पुत्र हो। तो उनकी इच्छा के कारण, उनकी वाइफ की इच्छा के कारण पुत्री उत्पन्न हुई यज्ञ से। तो फिर व्यवस्थित मनु ने इच्छा जाहिर की वशिष्ठ से कि आप तो बहुत माहिर हो यज्ञ करने में, तो ये कैसे गलती हो गई कि एक पुत्री जगह पुत्री हो गई। तो इसके आगे का श्लोक आज 19 नंबर। निशम्य तच्चस्तस्य भगवान प्रतिपामः होतुर्व्यं तकिपं ज्ञात्वा बभासे रविनन्दनम्। मनु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्ति संपन्न प्रतिपामः वशिष्ठ होकर पुरोहित की त्रुटि को समझ गए, अतः वे सूर्य पुत्र से इस प्रकार बोले, एतत् संकल्प वैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारत तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण लक्ष्य में यह त्रुटि हुई है, फिर भी मैं अपने पराक्रम से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायशा अस्तोषितादि पुरुष मिलाया पुस्तक कामया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अत्यंत सुविख्यात एवं शक्ति संपन्न वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के बाद परम पुरुष भगवान विष्णु से इला को पुरुष में परिणित करने के लिए प्रार्थना की। तस्मै कामवरम तुष्टो भगवान हरिर ईश्वर ददावि विलाभवत्तेन सुदिम्ना पुरुषर्षभ। परम नियंता परमेश्वर ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस तरह इला सुदिम्न नामक एक सुंदर पुरुष में परिणित हो गई। स एकदा महाराज विचरण्य मृगयां वने व्रतः कतिपया मात्यैर अश्वमारुध्य सैंधवम् प्रग्रहारुचिरं चापं सरारस्य परमाद्भुतान् दंसितो अनमग्रं वीरो जगामं दिशमुत्तराम्। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुदम अपने कुछ मंत्रियों और साथियों के साथ सिंध प्रदेश से लाए गए घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जंगल में गया। वह कवच पहने था और धनुष बाण से सुसज्जित था। वह अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते हुए तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। सुकुमार वनम मेरोर्धस्तात् प्रवेशः यत्रास्ते भगवान सर्वो रममाण सहोमय। वहां उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है, जहां शिवजी सदैव उमा के साथ आनंद विहार करते हैं। सुदुम्न उस वन में प्रविष्ट हुआ। तस्मिन् प्रविष्ट एवासो सुद्युम्न परवीरः अपश्य स्त्रियमात्मानम् अश्वं च वडवाम् नृप। हे राजा परीक्षित, ज्यों ही अपने शत्रुओं का दमन करने में निपुण सुद्युम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, त्यों ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणित हो गए हैं। तथा तदनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो भुवन वीक्षमाना परस्परम्। जब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूपों एवं अपने लिंग को विपरीत लिंग में परिणित हुए देखा, तो वे सभी अत्यंत खिन्न हो गए और एक दूसरे की ओर देखते रहे। श्री राजोवाच कथमेवं गुणोदेश केन वा भगवन कृत प्रश्नमेवं समाक्षक्ष्व परम कौतूहलम हिना। महाराज परीक्षित ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और किसने इसे इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। श्री शुक उवाच, एकदा गिरिशं दृष्ट मृषयन्तत्र सुव्रता दिशो वितिभिराभाषा कुर्वन्त समुपागमन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करने वाले महान साधु पुरुष उस जंगल में शिव जी का दर्शन करने आए। उनके तेज से समस्त दिशाओं का सारा अंधकार दूर हो गया। तान्विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडीता भषम भर्तुरंगात समुत्थाय नीमी माश्य पर्यधा। जब देवी अंबिका ने इन महान साधु पुरुषों को देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हुईं, क्योंकि उस समय वे नग्न थीं। वे तुरंत अपने पति की गोद से उठ गईं और अपने वक्ष स्थल को ढकने का प्रयास करने लगीं। ऋषियोपि तयोर्वीक्ष्य प्रसंग रममानयो निव्रतः प्रयुस्तस्मान् अरनारनाश्रमम्। शिवजी ने पार्वती को काम क्रीड़ा में संलग्न देखकर सारे साधु पुरुष आगे जाने से तुरंत ही रुक गए और उन्होंने नर नारायण के आश्रम की ओर चल पड़े। तद इदं भगवानाः प्रियाया प्रियकाम्यया स्थानं यः प्रविश्येदेत अत्सवयोषित भवदेति। तत्पश्चात अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने कहा, कोई भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करते ही तुरंत स्त्री बन जाएगा। और आज का श्लोक है जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। तत् ऊर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति हि सा चानुचर संयुक्ता विचचार वनाद्वनम्। तत् ऊर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति हि सा चानुचर संयुक्ता विचचार वनाद्वनम्। तत् ऊर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति हि सा चानुचर संयुक्ता विचचार वनाद्वनम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ततः ऊर्ध्वं उस समय के बाद से वनम जंगल में तत् उस वै विशेष रूप से पुरुषा पुरुषगण वर्जयंती नहीं प्रवेश करते ही निसंदेह सा स्त्री रूप में सुदुम्न च भी अनुचर संयुक्ता अपने साथियों के साथ विचचार घूमने गया वनात वनम एक जंगल से दूसरे में। अनुवाद, उस समय से कोई भी पुरुष उस जंगल में प्रवेश नहीं किया था, किंतु अब राजा सुदुम्न स्त्री रूप में परिणित होकर अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। आप लोग अनुवाद दोहरा सकते हैं, उस समय से कोई भी पुरुष ने उस जंगल में प्रवेश नहीं किया था, किंतु अब राजा सुदुम्न स्त्री रूप में होकर अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवद गीता दूसरे अध्याय 22वें श्लोक में कहा गया है, वांसासि जीर्वाणि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि संयाति नवानि देही। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने अथवा अनुपयोगी के शरीरों को त्याग कर नवीन देह धारण करता है। यह शरीर एक वस्त्र की भांति है और यहाँ पर इसे सिद्ध किया गया है। सुद्युम्न तथा उसके सभी साथी नर पुरुष थे, जिसका अर्थ यह है कि उनकी आत्माएं नर वस्त्र की थीं, नर वस्त्र से ढकी थीं, किंतु अब वे स्त्रियां बन गए थे, जिसका अर्थ यह है कि उनका वस्त्र बदल गया था किंतु आत्मा वही रहा। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा से नर को नारी में और नारी को नर में परिणत किया जा सकता है, किंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। शरीर को तो इस जीवन में या अगले जीवन में बदला जा सकता है। अतएव जिस व्यक्ति को आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में किस तरह देहांतरण करता है इसका ज्ञान है, वह शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह सिर्फ एक आवरण मात्र है। पंडिता सम दर्शिना, ऐसा व्यक्ति आत्मा के दर्शन परमात्मा के अंश के रूप में करता है, इसलिए वह समदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति है। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मॉर्निंग भागवतम क्लास में। एक बार हमारा एक इंग्लिश का टीचर था, तो उसने एक बार सब बच्चों से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द बिगेस्ट फियर, सबसे बड़ा भय किस चीज़ का है। तो सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए। किसी ने बोला मृत्यु का भय है, किसी ने पेरेंट्स का डर लगता है, किसी ने कहा टीचर्स का डर है, किसी ने बोला होमवर्क का डर लगता है। तो ऐसे सब लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए। तो फिर टीचर ने बोला कि नहीं, ये सब गलत है। एक्चुअली जो सबसे बड़ा फियर होता है, बिगेस्ट फियर इज स्पीकिंग इन पब्लिक। तो आज मुझे थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा है कि ये सबसे बड़ा भय है। तो मैं यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ वैष्णव गण हैं, और तो मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं श्रीमद् भागवतम में बोल सकूं, और तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें, स्पेशली हैगिरी प्रभु, केशमाय प्रभु, राम राघव प्रभु जी। तो मैं उनके आशीर्वाद से कुछ श्रीमद् भागवतम पर कुछ चर्चा करूँ। अभी मैंने भी इसको कम्प्लीट नहीं कर पाया हूँ, बट मुझे एज ए सर्विस से कुछ सेवा मिली है तो मैं इसको पूरा कर सकूँ। धन्यवाद। तो इसमें बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है कि उनकी संतान हुई, पहले वो लड़की हुई, फिर उन्होंने फिर प्रार्थना की वशिष्ठ मुनि से, फिर उनको लड़के में कन्वर्ट कर दिया, और फिर वो जंगल में जा रहे हैं, फिर वो लड़की बन गई। तो बहुत ही मतलब मैं पहली बार ऐसा कुछ सुना है एक्चुअली शास्त्र में। तो मैं सोच रहा था कि शास्त्र में खाली यही घटना है क्या, और भी कोई घटना है ऐसी जिसका नर नारी में या नारी का नर में परिणित हुआ हो। तो मुझे एविडेंस मिले, एक तो यही ऑलरेडी घटना है, एक घटना और आती है पद्म पुराण में। एक बार शिव जी जो हैं, एक बार उन्हें प्रयास किया पार्वती जी से कि आपका जो रंग है वो थोड़ा डार्क है, तो मुझे पसंद नहीं है, आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगी तो और अच्छा होगा। तो ये प्रयास उनको, जो पार्वती थी उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तपस्या करती हूँ और तभी तक वापस आऊँगी जब मेरा रंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। तो तपस्या करने चले गए और अपने बेटे जिसका नाम था सुकुमार, तो उनको एज अ गार्ड रख दिया कि जो शिव जी हैं ये वुमेन सीजर हैं एक्चुअली, तो आप गार्ड रहो यहाँ पे, कोई नारी यहाँ से अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो उस समय एक डेमोन था जिसका नाम आदि था, असुर था जिसका नाम आदि था। तो आदि था ये अंधक, एक और डेमोन था उसका पुत्र था। जो अंधक था उसको, उसने भी लॉर्ड ब्रह्मा की तपस्या की और लॉर्ड ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु खाली शिवजी के द्वारा ही होगी और किसी के द्वारा नहीं होगी। तो उसकी भी जो हत्या है शिवजी ने की थी। तो इसने फायदा उठाया डेमोन आदि ने कि एक अच्छा है, उसने सारे ऑलमोस्ट डेमिगॉड्स को जीत लिया था, अब शिवजी पर भी विजय पाने का अच्छा मौका है। और उसे याद था कि अपने पिता की हत्या का बदला भी मैं ले सकता हूँ। तो इससे पहले उसने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, कई सालों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि उसकी डेथ नहीं हो सकती, एक ही कंडीशन पर डेथ होगी उसकी, जब तक कि अपने शरीर को दो बार ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, दो बार अपने शरीर का रूप को नहीं बदलेगा, तब तक उसकी डेथ नहीं होगी। तो इस चीज का फायदा उठाकर वो गेट पे पहुंचा, वहां उनके पार्वती के बेटे खड़े थे। तो उनसे पहले उसने अपने आप को सबसे पहले एक सर्प के रूप में कन्वर्ट किया, क्योंकि एज ए नॉर्मल असुर के रूप में जाता तो एंट्री नहीं मिलती, पहचान लेते। तो उसने सर्प के रूप में किया, क्योंकि सर्प की एंट्री है वहां पे शिव जी के लोक में, एज ए सर्प वो एंट्री कर गया। जैसे उसने दूर से शिव जी को देखा तो वो भूल गया कि ब्रह्मा जी ने कुछ वरदान दिया कि मैं दो बार खाली रूप चेंज करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी एक्चुअली, तो भूल गया। उसने दोबारा अपना शरीर रूपांतरण किया, किसमें? पार्वती के रूप में अपने शरीर को रूपांतरण कर लिया। और जैसे ही पार्वती को देखा तो शिवा इमीडिएटली एम्ब्रेस थी, पहचान नहीं पाए। तो डेमोन ने उनको आंसर दिया कि मैं गलत थी एक्चुअली, मुझे ऐसे तपस्या करने नहीं जाना चाहिए था, आप ही सर्वोत्तम है, आपको छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए। तो शिवजी को थोड़ा डाउट हुआ कि पार्वती ऐसा तो नहीं कर सकती, एक बार जो बहू लेंगी तो फिर उसे पूरा करके ही आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में आ जाए। तो शिव जी ने फिर देखा कि कुछ मार्क देखे, निशान देखे, एक उनके दाहिने अंग में कुछ निशान था जो पार्वती पर नहीं था एक्चुअली, जो उनके पता, तो पहचान गए कि ये कोई आदि डेमोन है एक्चुअली, ये पार्वती का रूप धर गया है। तो इमिडिएटली उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो यही और एक प्रसंग मिला मुझे, खाली और भी हो सकते हैं बट मुझे यही मिला, दो ही प्रसंग मिले ऐसे। तो इसके अलावा हम और भी काफी सारी ऐसी घटनाएं श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं कि उनको सुनने के बाद हमको लगता है कि ये सब काल्पनिक है, हमें विश्वास नहीं होता क्योंकि हमारा शास्त्रों में फेथ नहीं है। जैसे हम कृष्ण लीला में काफी सारे डेमोन सुनते हैं, कोई आगाज हो रहा है, कोई किसी का रूप धर के आ गया, किसने इतना बड़ा सर्प है अजगर है, तो हमें विश्वास नहीं होता है इसलिए। बट ठीक है, कमल लोचन को अपने लेक्चर में बता रहे थे कि ये सब श्रीमद् भागवतम में इतनी काल्पनिक जितनी भी चीजें हैं ये सब काल्पनिक नहीं है इसलिए, ये सब सत्य हैं, इसी वजह से श्रीमद् भागवतम में दी गई हैं। और इनको हम अपनी लाइफ में इमिटेट भी करते हैं, हम कुछ कल्पना करते हैं। जैसे एक मूवी आई थी तो उसमें भी ऐसा ही था कि कुछ मेल पुरुष लोग एंट्री करते हैं एक एरिया में, तो उस एंट्री में एंट्री करते ही उन सबका शरीर बदल जाता है स्त्री रूप में। तो वो खाली फिल्मों में दिखाते हैं कि एक कल्पना है, मनोकल्पना है, लेकिन कमलचंद बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य जो कल्पना कर सकता है, जो कुछ भी वो सोच सकता है, वो वास्तव में है, ऑलरेडी है, पास्ट में कहीं ना कहीं हुआ है, तभी वो उसके माइंड में आ रहा है, इसलिए कल्पना कर पा रहा है उस चीज की। अगर वो पास्ट में कहीं हुआ ही नहीं है तो कल्पना उस चीज की कर ही नहीं सकता। तो जितनी भी चीजें हम श्रीमद् भागवतम में देख रहे हैं तो सत्य हैं। तो जैसे हम देखते हैं पहले के जमाने में मंत्र विद्या यूज होती थी, तो मंत्रों से काफी सारी चीजें वो मंत्रों से कर लेते थे। जैसे मंत्र बोलते थे तो अग्नि जब यज्ञ करते थे अग्नि मंत्र से उत्पन्न हो जाती थी, लेकिन आज भी वो मंत्र है लेकिन वो मंत्र काम नहीं करता। आज उस मंत्र को बोलेंगे यज्ञ करने वाले जो पुरोहित हैं, लेकिन मंत्र के साथ साथ माचिस भी जलाएंगे तो जब अग्नि जलेगी। और हम देखते हैं श्रृंगी ऋषि थे, तो श्रृंगी ऋषि को कहा जाता है कि उनसे ही कलयुग के स्टार्ट हुई थी, जो ब्राह्मण का डाउनफॉल है वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वो जो अंतिम ब्राह्मण थे उनके पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने श्राप दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाक काटने से राजा परिषद की मृत्यु हो जाएगी, तो उनके पास भी इतनी शक्ति थी। और हम देखते हैं काफी सारे विमान थे जो मंत्र विद्या से चलते थे, और भी काफी सारी ऐसी चीजें जो मंत्र से हम काफी सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आज भी हम उन चीजों को इमिटेट करते हैं, मंत्रों से नहीं करते, किससे करते हैं? यंत्र विद्या से। आज हम जो विद्या यूज करते हैं वो यंत्र विद्या है। हम विमान यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यंत्रों से बना के, वो एक यंत्र है, एलिमेंट से बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो हम यंत्र विद्या हम यूज कर रहे हैं, हम कॉपी तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही रिस्की होता है और टेम्परेरी भी है। जैसे हमने विमान बनाया तो क्या है, टेम्परेरी, उसका कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। और जैसे प्रभुपाल अपने लेक्चर में लिख रहे हैं कि जैसे वो नर से नारी में कन्वर्ट हुए थे, तो आधुनिक चिकित्सा से भी नर को नारी में और नारी को नर में परिगणित किया जा सकता है, लेकिन इट्स नॉट इजी, बहुत ही रिस्की है, इसमें 4-5 काफी लोगों की डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो जाती है काफी सारे लोगों की, और एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, 4-5 साल लगते हैं, और इसकी कॉस्ट भी 60-70 लाख रुपए बस छोटी छोटी सी कॉस्ट है। तो इट्स नॉट इजी एक्चुअली कि हम यंत्र विद्या से यूज करके इन चीजों को करें, इमिटेट करें। टेम्परेरी हैं, रिस्की हैं। इसी वजह से प्रभुपाद प्रबंध में लिख रहे हैं कि शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। शरीर को इस जीवन में या अगले जीवन में बदला जा सकता है, हो सकता है किसी का इसी रूप में इसी जीवन में शरीर बदल गया, हो सकता है अगले जन्म में आगे बदले। और हम देखते हैं कि इस जीवन में भी हमारा शरीर हर क्षण हमारे जो सेल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। बताया जाता है कि 7 साल के अंदर हमारे पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर सेल चेंज नहीं होते तो उसे एक बीमारी होती है, क्या होती है, वही कैंसर होता है। कैंसर वही है जो सेल अंदर चेंज होना बंद हो जाता है, वही कैंसर है। तो इसी वजह से प्रभुपाद अपने पर्पस में हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। तो इस संदर्भ में एक स्टोरी है। एक बार एक सन्यासी थे तो जो विश्व भ्रमण करने के बाद एक बार एक राजा के रियासत में आए और राजा से मिले। राजा ने उनके खूब मेहमान अंदाजे की रखने के लिए स्थान दिया, रहने के लिए उनका स्वागत किया। फिर राजा ने उनको अप्रोच किया कि आप इतने बड़े सन्यासी हैं और मेरे पास एक क्वेरी है जो मैं पिछले 20 साल से निरंतर हर एक व्यक्ति से पूछता हूँ जो कोई भी आता है, लेकिन कोई भी उसका प्रॉपर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सका उस आंसर से, तो आप प्लीज़ मुझे सेटिस्फाई, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। तो सन्यासी ने कहा कि हाँ पूछिए बिल्कुल। तो उसने कहा कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ और हाँ मेक श्योर कि मैं कोई फिलोसफी या ईश्वर के बारे में बताने का मुझे प्रयास मत करना, मैं साक्षात ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है, सन्यासी ने कहा कि हाँ अभी मिलना है कि कुछ देर में मिलना है। तो राजा को थोड़ा डाउट हुआ तो राजा ने बोला कि आप शायद गलत समझ रहे हैं, मुझे ईश्वर नाम के किसी व्यक्ति से नहीं मिलना। ईश्वर जो परम नियंता है, परमात्मा परमेश्वर है, उनसे मुझे मिलना है। कि हाँ हाँ भाई मैं सही समझाऊँ और मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ और मेरा तो धंधा ही यही है, मैं तो यही काम करता हूँ, भगवान को सभी लोगों को भगवान से मिलवाने का ही मेरा काम है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि अभी मिलना है कि कुछ देर बाद मिलना है। तो उसने कहा कि मैं 20 वर्षों से वेट कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है अभी मिलना चाहूँगा। तो उसने कहा ठीक है आप ये स्लिप लो और आप इस पर अपना परिचय लिख दो, आपका नाम वगैरह जो कुछ भी है, तो जिससे आप परिचय दोगे तो मैं भगवान को आपका परिचय दूंगा और उस परिचय को बताऊंगा कि ये फलाना व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। तो राजा ने क्या किया, अपना नाम लिखा, अपने राज्य का नाम लिखा, अपने डेजिनेशन लिखी, अपनी उम्र लिखी, बॉडीली जितने सिम्टम्स थे वो लिखे, तो सन्यासी को दे दिया। तो सन्यासी ने देखा, जरा नाम पढ़ा, कह रहे राजा आपने नाम दिया है, अगर अगर इसकी जगह आपका दूसरा नाम हो तो अभी आप वही व्यक्ति रहोगे। कह रहे हाँ वही व्यक्ति रहूँगा, तो फिर ये तो आपकी गलत आइडेंटिटी है। कह रहे हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने अपने राज्य का नाम लिखा है, मेरे पास ये राज्य है, इतनी धन है, इतना दौलत है, अगर बाई चांस आपके पास राज्य नहीं रहेगा या धन दौलत नहीं रहेगी, आप भिखारी हो जाओगे, तो भी आप वही व्यक्ति रहोगे। कह रहे हाँ मैं वही व्यक्ति रहूंगा, उसमें क्या भिखारी हूँ, व्यक्ति तो वही हूँ। उसने कहा आपने उम्र रखी है 40 ईयर्स, अगर आप 40 साल के वो व्यक्ति हो, 50 साल बाद थोड़े चेंज हो गए, 50 साल बाद वही रहोगे, या 20 साल पहले जो व्यक्ति थे वही थे। कि हाँ मैं तो वही व्यक्ति था, वो तो मैं अंदर की अंदर से बॉडी चेंज हो रही है खाली, मैं तो वही व्यक्ति हूँ। फिर ने कहा कि जो बॉडी है, बॉडी 10 साल बाद चेंज हो जाएगी, आपकी बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन आप व्यक्ति तो वही रहोगे। कह रहे हाँ वही व्यक्ति रहूंगा। ये तो आपने जो परिचय लिखा है आपने स्लिप पर, ये तो बिल्कुल गलत है, तो अगर मैं इस परिचय को भगवान को दूंगा तो भगवान के सामने मैं झूठा बनूंगा, भगवान कहेंगे ये तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा व्यक्ति, तो आप सही परिचय दीजिए और मुझे झूठा मत बनाइए भगवान के सामने, और आप सही परिचय दीजिए तो मैं भगवान से आपको मिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिलवा सकता हूँ। तो राजा कन्फ्यूज हो गया, कह रहे अभी तक मैंने तो यही परिचय सुना है अपना, इसके अलावा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो कह रहे तो सन्यासी ने कहा कि पहले आप अपने बारे में अपनी आइडेंटिटी को जानो, तब मेरे पास आना है। तो यही एक्चुअली प्रभुपाद भी हमेशा यही अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि जो बेसिक नॉलेज है एक्चुअली कि हमें अपने आप को जानना। तो श्रीमद् भगवद गीता है, उसकी भी स्टार्टिंग जो कृष्ण भगवान ने किया किससे किया, नॉलेज अबाउट साइंस ऑफ सोल, जो सेकेंड चैप्टर है वो सोल के बारे में है कि हम आत्मा नहीं, हम आत्मा है सॉरी शरीर नहीं है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम आत्मा है शरीर नहीं है। और प्रभुपाद हमेशा इसको इस सब वर्षों को ढूंढते हैं हमेशा हर लेक्चर में प्रभुपाद अपने सोल के बारे में जरूर रिपीट करते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर द सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल. तो प्रभुपाद वाई हैमरिंग, मतलब क्यों हमेशा इस पॉइंट पर जोर देते हैं एक्चुअली. तो एक परपट में दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसा व्यक्ति मिलना जिसको जानकारी हो सोल के बारे में. तो हम देखते हैं कि हम क्यों नहीं जान पाते कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें, हम बॉडी स्तर पर क्यों हैं, हमें क्यों नहीं ज्ञान कि हम सोल हैं. क्योंकि जो सोसाइटी है हमको एनफोर्स करती है कि आप क्या हो, बॉडी हो, बॉडी की तरफ से पूरी प्रीचिंग करेगी, कन्वेंस करेगी. कैसे करती है कि काफ़ी सारे हमें एड्स दिखाती है, कॉस्मेटिक्स के एड दिखाई देते हैं कि आप बॉडी हो, आप इसको इम्प्रूव करो, आपकी बॉडी एज इट इज रहेगी. तो बहुत सारे बॉडी कॉन्शियस के लिए हमारे सोसाइटी हम देखते हैं. एक बार प्रभुपाद एक मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. प्रभुपाद अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहे थे. तो प्रभुपाद ने पूछा कि वेयर इज द डिपार्टमेंट जो ये डिफरेंशिएट करता हो लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या अंतर है, वो डिपार्टमेंट कहाँ है. तो यही हमारा एजुकेशन सिस्टम है एक्चुअली. हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमें यही फोर्स करता है कि आप बॉडी हो, आप आत्मा नहीं हो, आप बॉडी हो. एजुकेशन हमारा किस लिए है कि हम बॉडी को चला सकें एक्चुअली, इसी वजह से एजुकेशन दी जाती है. लेकिन जो असली एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब है जो पुराने जमाने में एजुकेशन दी जाती थी टू डेवलप अ करेक्टर एक्चुअली, चरित्र निर्माण के लिए एजुकेशन दी जाती थी. लेकिन अभी उल्टा है एक्चुअली. अभी क्या है, खाली बॉडी को कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं इस वजह से खाली एजुकेशन डिपेंड करती है. और जो टीचर्स हैं उनको पता भी नहीं है एक्चुअली, इग्नोरेंस, उनको पता भी नहीं है कि एजुकेशन का पर्पस क्या होता है एजुकेशन देने का. तो इस वजह से सोसाइटी हमें एनफोर्स कर रही है कि हम बॉडी हैं. जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो कहा जाता है कि उसे अपने 100 जन्म पिछले जन्म याद आते हैं कि पिछले जन्म में ये था, मुझे ऐसे ऐसी प्रताड़ना मिली, फिर मेरी ऐसे डेथ हुई. तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं अब की बार आके आपके भजन नहीं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा. लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो प्रकट होता है इस धरती पर तो क्या होता है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसे भुला देते हैं कि नहीं भाई तुम भगवान के, आप कुछ नहीं, आप कौन हो, तू तो मेरा लल्लू है, तू चिंकू है, तू मेरा लड्डू है. तो ऐसे ऐसे करके उसको बुलाते हैं और बड़ा होकर तुझे पढ़ना है, इंजीनियरिंग करनी है, जॉब करनी है, फिर जितनी मेरी डिजायर थी जो मैं नहीं पूरा कर पाया वो तुझे पूरी करनी. तो पहले से इसको ट्रेनिंग मिलती है बचपन से कि क्या है, तुम कौन हो, तुम बॉडी हो, आत्मा नहीं हो. और हम पर बहुत डिफरेंट तरह के एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं जो बॉडी से ही बेस्ड होते हैं. और हम दुनिया में काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन, भेद देखते हैं कि तुम काले हो, तुम बॉडी हो, तुम इंडियन हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी हो. तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लोगों में. जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ भी एक्चुअली दो बेस पे एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करते थे. फर्स्ट इज एरिया वाइज, एरिया बेसिस पे, और सेकंड इज कास्ट बेसिस पे. तो एरिया बेसिस पे के उस एरिया के लोग एक ग्रुप में रहेंगे और दूसरे एरिया के ग्रुप एक ग्रुप में रहेंगे. और ऐसे कास्ट वाइज पे जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण एक, उनका अलग ग्रुप रहता था, आप लोग सबका एक्सपीरियंस होगा. और दूसरे कास्ट के लोग उनका अलग ग्रुप रहता था. तो ये डिफ्रेंशिएट हमें दिखाता है कि हम बॉडी हैं, एनफोर्स करते हैं हमको कि आप बॉडी हो, आत्मा नहीं हो. और हम काफ़ी बार देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो क्या करते हैं, किसी के टच हो गया किसी तो उसे गुस्सा आ गया. एक बार अमेरिका में एक हस्बैंड वाइफ थे तो एक वाइफ ने टॉवल टांगी तो वाइफ की टॉवल के ऊपर एक उसके हस्बैंड ने टॉवल रख दी तो वाइफ ने केस कर दिया कि मेरी टॉवल के ऊपर अपने टॉवल कैसे रखी. तो इतने ज़्यादा हम अटैच्ड हैं किसी ऑब्जेक्ट से. जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हुए थे तो जब देखते थे आपस में, जब हत्या होती थी हिंदू भी पड़े होते थे वहाँ, मुस्लिम भी पड़े होते थे. बाद में क्या होता था, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती थी, सबको उठाती थी और एक साथ जला देती थी। तो तब वो बाद में भेद नहीं करती थी कि हिंदू या मुसलमान है। एक बार एक व्यक्ति बस में चढ़ा, तो बस में चढ़ा तो सीट, एक सीट खाली थी, उस पर बैठ गया। तो दूसरा बंदा आया, भाई ये मेरी सीट है क्या, मैंने इस पर रुमाल रखा हुआ था, ये मेरी सीट है। तो कहता, अच्छा हुआ आपने रुमाल सीट पर रखा, बगल में मेरी वाइफ बैठी थी उस पर नहीं रखा, वो भी आपकी हो जाती नहीं थी। तो लोग सीट से भी इतने अटैच होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि जो हमारी बॉडी है और बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ें उनसे ही बहुत अटैच हैं। प्रॉपर्टी के लिए फाइट करते हैं लोग कि एक एक जैसे फ्लोर है तो मैं ये वाला फ्लोर चाहिए मुझे, ये हमारा ये फ्लोर चाहिए। तो काफ़ी सारे प्रॉपर्टी केसेस हैं इसमें। अभी रिसेंटली हमारे घर पर एक केस हो गया था एक्चुअली। तो जो हमारा घर है जो, तो एक व्यक्ति ने उसके नकली कागज बनवाए हमारे घर की प्रॉपर्टी के और बैंक में जमा करा के बैंक से लोन पास करवाना चाह रहा था। 2.5 लाख का लोन, मतलब ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट था। और इससे पहले ही वो कई लोगों का ऐसे कर चुका था और कई सारे पैसे हड़प चुका था। वो तो बैंक मैनेजर जान पहचान कर, तो बाद में हो गया, फिर भी उसको FIR की वो जेल में चला गया। तो ऐसे ऐसे मतलब प्रॉपर्टी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतने लोग बॉडी चेतना में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चेतना से उठें और हम जाने अपने आप को कि हम बॉडी से डिफरेंट कुछ हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या हानियां हैं कि अगर हम अपने आप को सोल रियलाइज नहीं करते, हम अपने आप को बॉडी से अलग कुछ रियलाइज नहीं करते। तो इससे हानियां क्या होंगी कि हम डिस्टर्ब बाई डॉल्टीज, जो डॉल्टीज हैं उनसे हम डिस्टर्ब होंगे। जैसे किसी को ओनर मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, तो उसे डिस्टर्ब होगा। कभी ज़्यादा गर्मी है, कभी जाड़ा है, कभी बरसात आ गई नहीं आई, किसी को अच्छा लगता है, किसी को ठंड पड़ रही है तो सोचेगा उसे गर्मी चाहिए, कभी गर्मी पड़ रही है तो चाहता है कि ठंड चाहिए। तो कभी सेटिस्फाई नहीं रहता, हमेशा डॉल्टी से डिफेक्टिव रहता है, क्योंकि अपने आप को क्या मानना है, बॉडी मानना है एक्चुअली। एंड सेकेंड इज हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट। इस संदर्भ में एक स्टोरी है, हिज ग्रेस बंसीवदन प्रभु हमें भक्ति शास्त्री क्लास में बता रहे थे कि एक बार एक बच्चा था एक पिता का, तो उनके एक गाड़ी थी बहुत अच्छी थी, बहुत उसकी देखभाल करते थे उसके पिता, रोज धोते थे उसको, कपड़े से पहुँचते थे और कभी कभी चलाते थे उसको। और तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा अपने बेटे को कि बेटा जो है अपने कुछ पेन लेके उसको कुछ स्क्रैच कर रहा है गाड़ी पर। तो उनको बहुत गुस्सा आया कि उसकी इतनी हिम्मत, मुझसे इतनी प्यारी गाड़ी उसको स्क्रैच कर रहा, बिगाड़ रहा। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टिक ली और उसके हाथ पे इतनी तेज तेज मारी, उसे हम बहुत देर तक मारते रहे। मारते मारते क्या हुआ, उनका बच्चा तो बेहोश हो गया। तो बेहोश हो गया, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने देखा उसको, ऑपरेशन किया, तो उसका हाथ पूरा बेकार हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि अब इस हाथ से यह बच्चा कभी आजीवन कुछ नहीं कर सकता, हाथ यूजलेस है, उसकी उंगलियाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो बेटा घर वापस आया और पिता से पूछता, पिताजी मेरे हाथ में क्या हो गया, मैं कभी, मेरी उंगलियां क्यों नहीं चल रही, क्या मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो जो बेट जो फादर थे उनकी आंखों से आंसू आने लगे। जब उन्होंने गाड़ी पर जाके देखा तो गाड़ी पर उसके बेटे ने क्या लिखा था, आई लव यू पापा। जब उन्होंने गाड़ी पर ये देखा तो वो और ही बिल्कुल टेंस्ड हो गया, मतलब उसके बाद वो बिल्कुल टेंस्ड हो गया और उसने सुसाइड कर ली उनके फादर ने जाके। तो हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट भी चीज़ों से मटेरियल में कितना हानिकारक होता है। एंड थर्ड इज फैमिली अफेक्शन, कि हम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे काफ़ी सारा अटैच हो जाते हैं समटाइम, कुछ लोग सब नहीं। तो और इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट फाइट, हम फाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में हमेशा फाइट रहती है, तो वो क्योंकि वो सोचते हैं कि इंडियन हमारे दुश्मन है और इंडिया वाले सोचते हैं कि पाकिस्तानी दुश्मन है। तो प्रभुपाद एक प्रपट में अपने लिखते हैं कि जो हम यहाँ पे इंडियंस हैं वो सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान हमारे दुश्मन हैं, तो पाकिस्तान का चिंतन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट बर्थ क्या होगा उनका, वो पाकिस्तान में जन्म लेंगे एज अ पाकिस्तानी। और जो पाकिस्तानी सोचते हैं कि इंडियन दुश्मन है, उनकी जो सोच, वो क्या सोच रहे हैं कि मैं इंडियन के बारे में सोच रहे हैं हमेशा, तो उनका बर्थ कैसा होगा, इंडिया में होगा, तो फिर से आपस में लड़ेंगे, वो एक तरफ से एज ए इंडियन, एक तरफ से पाकिस्तानी। तो ये सब फाइट चलती रहती हैं। और हम जो सर्विसेज हैं, जो हमें सेवा मिलती है, उसको हम मटेरियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जो भी सर्विस हमको मिल रही है तो इससे मेरा क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, ये इसमें मेरा क्या फायदा होगा। हम उसको ये नहीं देखते कि ये जो सर्विस मुझे मिली है किसके लिए करनी है, मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी है, लेकिन हम उल्टा देखते हैं, क्या देखते हैं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी एंड बॉडी नीड्स, तो लोग पार्लर जाते हैं, बॉडी को मेंटेन करते हैं, 3-4 घंटे जिम से जाते हैं, एंड ह्यूमन लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ वेस्टेड। अगर ये सब काम कर रहे हैं तो उनकी ह्यूमन लाइफ क्या है, वेस्ट है। तो श्रील प्रभुपाद इस उपनिषद के 3rd श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सदृढ़ नाव से की जाती है जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविक से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए, किलर ऑफ सोल। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। तो अगर हम इस ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाएगी, अगर हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, और इससे क्या होता है कि हम कुछ कॉन्क्रीट थ्योरीज करते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, भगवान ने ये सारी चीज़ें किस लिए बनाई है, मेरे एन्जॉयमेंट के लिए बनाई है, और हम देखते हैं कि नो वैल्यू फॉर लाइफ एंड रिलेशनशिप्स, तो इतना सारा एबॉर्शन होता है। पूरे दिल्ली में हर ईयर 35,000 एबॉर्शन होते हैं और 7 लाख इन इंडिया, भारत में। तो उनके लाइफ के लिए कोई वैल्यू नहीं है, वो समझते हैं कि जब तक गर्भ में बच्चा है उसके अंदर सोल है ही नहीं, आत्मा नहीं, वो क्या है, एक मैटर है, उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम देखते हैं एनिमल किलिंग, वो एनिमल जो किलिंग करते हैं वो सोचते हैं कि एनिमल के अंदर क्या है, सोल नहीं है, वो क्या है, मैटर है। तो इस तरह हम देखते हैं ये हानियां हैं कि हम जब अपने आप को एक शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते, और जब हम अपने आप को एक शरीर रियलाइज, सॉरी सोल रियलाइज कर लेते हैं कि हम क्या है, शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स हैं, वी आर इक्विपोज्ड एंड स्टेबल, हम हर स्थिति में स्टेबल रह पाते हैं। जैसे जड़ भरत महाराज थे, उनको क्या किया, कुछ लोग आए उनको ले जा रहे थे कि बलि चढ़ाने है किसको, काली माता को, तो उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि मैं सोल बॉडी नहीं हूँ, बलि तो क्या दिक्कत है। तो जैसे उनको, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, उस स्थिति में वो स्टेबल थे। टाइम का मैं थोड़ा स्पीड से, एंड सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी यूज फॉर द बॉडी। अगर पता पड़ जाएगा कि हम सोल हैं तो जो टाइम जो हम बॉडी के लिए जितना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको हम कम करेंगे। एंड नॉट अफेक्टेड बाई बॉडी रिलेशन, जो बॉडी रिलेशन हैं उनसे हम अफेक्टेड नहीं होंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद से उनके डिसाइपल ने क्वेश्चन किया कि प्रभुपाद, भगवान कहते हैं कि हमें हर स्थिति में स्टेबल रहना चाहिए, दुख सुख कैसा भी हमें स्थिति में डेविएट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जब अभिमन्यु की हत्या हुई तो अर्जुन रो रहे, और अर्जुन छोड़ो कृष्ण भगवान भी रो रहे हैं एक्चुअली। तो इससे हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, इट्स नेचुरल एक्चुअली, अगर आपके बॉडी रिलेशन हैं, अगर उसकी हत्या हो रही है, उनको कुछ कष्ट है, तो इस नेचुरल के हमें कुछ कुछ कष्ट होगा और हमारे अंदर इमोशन है, हम कोई पत्थर हृदय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्या चीज़ एक जो देखने लायक है, महत्वपूर्ण है, कि अर्जुन ने क्या नहीं किया, जो भगवान की सेवा थी वो रोके नहीं आखिर। भगवान क्या, जो अर्जुन क्या कर रहे थे, भगवान की सेवा के लिए युद्ध कर रहे थे, भगवान ने बोला कि अब युद्ध करो, इतना होने के बावजूद भी अर्जुन ने युद्ध कंटिन्यू किया, और इसके बावजूद और अच्छी तरह से उन्होंने युद्ध किया। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें बॉडी रिलेशन से अफेक्ट नहीं होना, हमारी जो सेवा है उसको कंटिन्यू करना है, और ऑलवेज ब्लिसफुल, हमेशा खुश रहते हैं। एक्चुअली कंपैशन और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, हम सकते हैं जड़ भरत महाराज जो थे, जब चल रहे थे पालकी में राजा को लेके, तो चींटी को भी देख के चल रहे थे, इतने कंपैशन था उनके अंदर, और हमेशा इंक्विजिटिव रहते हैं अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, कि हमें सोल का तो पता चल गया ठीक है, लेकिन सोल कौन है, उसका भगवान से क्या संबंध है, मैं प्रॉब्लम, तो हमेशा कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करते हैं, और एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ जीते हैं, वेस्ट नहीं करते लाइफ को। मीनिंग पर्पस लाइफ क्या है कि मनुष्य जन्म पाइया, कृष्ण नाम ना भजिया, जानिया सुनिया विस खाइया। तो मनुष्य जन्म किसके लिए है, राधा कृष्ण भजने के लिए। तो वही वह काम करते हैं जिसको रियलाइज होता है कि हम बॉडी नहीं सोल है। इसी वजह से जो प्रभुपाद हमेशा इसको हैम्परिंग करते हैं कि हमें आपको रियलाइज करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद के डिसाइपल ने प्रभुपाद से क्वेश्चन किया कि प्रभुपाद आप हमेशा अपने लेक्चर में वही बोलते हो, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर द सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर द सोल, तो ऐसा आप बार बार क्यों रिपीट करते हो। तो प्रभुपाद ने कहा कि हैव यू रियलाइज, आपने रियलाइज किया कि आप आत्मा हो, कह रहे नहीं, इसी वजह से मैं रिपीटेशन करता हूँ कि आपको एक दिन रियलाइज हो जाए। तो प्रभुपाद इसी वजह से बार बार अपने हर कॉज लेक्चर में इसको एम्फसाइज करते हैं कि आप सोल हो, आप बॉडी नहीं हो। और प्रभुपाद इसको रियलाइज करने का क्या सबसे सरल तरीका है, अपने दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो प्रभुपाद इस पर्वत में डायरेक्टली लिख रहे हैं कि केवल एक ही उपाय है अपने आप को रियलाइज करने का, क्या है, जो शुद्ध भक्तों की कृपा होगी उसकी कृपा की बदौलत हम अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं कि हम आत्मा हैं और हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप हुए नित्येर कृष्ण दास। तो हमारा स्वरूप क्या है, हम नित्य दास हैं कृष्ण भगवान के। तो ये हम कब रियलाइज कर पाएंगे, जब हमारे जो गुरुगण हैं, जो वैष्णव आचार्य हैं, उनकी जब कृपा होगी। और कृपा कैसे मिलेगी उनकी हमको, जब हम उनके आदेशों का पालन करेंगे, जब हमारे जितने भी एंडेवर्स हैं, जितने हमारे पास नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, जब हम उसका प्रयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए या जो गुरु हैं, हमारे अथॉरिटीज हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम अपनी नॉलेज को यूज करेंगे, तब वो प्रसन्न होंगे और हम पर कृपा करेंगे, तब हम अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे कि हम कौन हैं, हम बॉडी नहीं आत्मा हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद सरलतम उपाय बताते हैं। तो इतना ही मैंने प्रिपेयर किया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णवन की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर भगवान की। सॉरी 3-4 मिनट ज़्यादा हो गए। हरे कृष्णा।
जैसे आप बता रहे थे राजा और सन्यासी, जब सन्यासी आया था उसके पास तो वो गलत आइडेंटिटी देता है, सन्यासी बोलते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे पासपोर्ट बनवाना हो पासपोर्ट बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, तो हम उसको यही आइडेंटिटी देते, अपनी डिजिग्नेशन हो गया, एज हो गया, या किसी प्रेसिडेंट से मिलना हो तो उसको ये देते, उधर तो हम मतलब सही मिल जाते हैं, सब कुछ फुलफिल हो जाता है, तो गलत कैसे हो गया आइडेंटिटी।
एक्चुअली अगर बहुत ही जगत में हमको किससे मिलना है तो ये आइडेंटिटी हमारी है, लेकिन उसको किससे मिलना था, भगवान से मिलना था। तो भगवान क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हैं, स्पिरिचुअल है, तो हमको स्पिरिचुअल आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, तब हम भगवान से मिल सकते हैं।